एक बहुत ही सुंदर बात से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे जो आज के अतिथि हैं वो हमारे बीच पधारेंगे। एक विदेशी भारत में घूमने के लिए आया, एक युवा ने उसे गाइड किया, कश्मीर, उसके पश्चात पूर्वोत्तर राज्य, दिल्ली, उसके पश्चात पश्चिम की ओर, और पूरे ही भारत को घुमाते हुए वो उन्हें लास्ट में कन्याकुमारी तक ले जाकर के पहुंचा। तीन सागर मिल रहे थे, सूर्यास्त हो रहा था। वहां पे खड़े होकर के जब वो सूर्यास्त का दर्शन कर रहे थे, तब विदेशी ने उस युवा से पूछा कि क्या यहां भारत खत्म होता है? क्या यहां भारत खत्म होता है? युवा था वो, जोश और ऊर्जा से भरा हुआ था, क्रिएटिव था, देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण था। उसने उस विदेशी को टर्न कर दिया और कहा, यहां भारत खत्म नहीं होता, यहां से भारत शुरू होता है। ये है वो युवा शक्ति, और आप सब वो युवा हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब अपने लिए ही जोरदार ताली बजा लें। और आज के हमारे टॉक शो के जो हमारी अतिथि हैं, रजनीश जी को भी मैं आमंत्रित करूंगा कि रजनीश जी हमारे बीच में पधारें। और आप देख रहे हैं हमारे बीच मिसेज रंजना कुमार, जो विजिलेंस कमिश्नर रही हैं, वो उपस्थित हैं। हमारे बीच राजयोगिनी कृति बहन जी उपस्थित हैं, सिस्टर रंजनी उपस्थित हैं, और साथ ही मैं आमंत्रित करूंगा रजनीश कुमार जी, जो दिल्ली से हमारे बीच पधारे हुए हैं, वो भी मंच में आ जाएं, मंच की शोभा बढ़ाएं, ताकि हम आज के अपने इस टॉक शो की शुरुआत करें। आप जानते हैं हमारी संस्कृति बहुत ही खूबसूरत है, वाणी से तो हम स्वागत करते ही हैं, लेकिन जब तक पुष्प गुच्छ ना हो तब तक स्वागत अधूरा ही माना जाता है। तो मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगा कि हमारी बहनों का, आज के जो हमारे अतिथि हैं, उनका पुष्प गुच्छों से अभिनंदन करेंगे, और आप सब करतल ध्वनि से सभी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। तालियों की गड़गड़ाहट युवाओं की तरह। मिसेज रंजना कुमार, प्रीति बहन जी, तालियों की गड़गड़ाहट। रजनीश कुमार जी, सिस्टर रंजनी, एक बहुत ही प्यारा सा विषय। हम सभी अपनी मातृभूमि से बेहद प्रेम करते हैं, और हमारे प्रेम का स्वरूप क्या हो, कैसे हम अपने देश को सर्वोच्च शिखर पर ले चलें, हमारा भविष्य सुखद हो, ऐसी तो हम कामना करते ही हैं, लेकिन देश का भविष्य कैसे सुखद हो, सुंदर हो, उसकी चर्चा आज के इस सत्र, इस टॉक शो में हम करेंगे। मित्रों, बचपन में हम सब एक कविता पढ़ा करते थे, सुना करते थे कि हे मातृभूमि, तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल नभ में सुख सूर्य का उदय हो, तुझको प्रसन्न देखूं बस लालसा यही है, फिर गोद में ही तेरी मेरा शरीर लय हो। इस कविता के पीछे बहुत ही गहन भाव रहे हैं, उस भाव को लेकर ही आज का ये टॉक शो है कि मैं अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए जीऊं, मेरा प्रयास, मेरा पुरुषार्थ राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है जो मैं उसे बेहतर से बेहतर बना सकूं। यही वास्तव में सच्चा देश प्रेम है, सच्ची राष्ट्रभक्ति है। हम सब अपने अपने स्तर पर ये कार्य तो करते हैं, लेकिन हमारा विशेष जो ये सेमिनार रखा गया है, ये जो समिट है, यूथ समिट, विशेष करके इसके लिए ही है कि कैसे हम स्वच्छ, स्वस्थ, स्वर्णिम भारत का निर्माण करें। और उसके लिए इतने सारे चिंतनशील युवा आज यहाँ एकत्रित हैं, ये देख करके बेहद प्रसन्नता हो रही है। तो पहले आज के टॉक शो में मैं आदरणीय कृति बहन जी की ओर चलना चाहूंगा, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं यूथ विंग की, 1974 से आप विद्यालय से जुड़ी हुई हैं और 1980 से आपने अपना संपूर्ण जीवन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को अर्पित किया है। देश के कोने कोने में जाकर आप युवाओं को जागृत करती रहती हैं और साथ ही अनेक जो यूथ कैंपेन है उनकी आपने नेतृत्व भी की हुई है। तो प्रीति बहन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो विषय आपने चूज किया, क्योंकि आप जब बैठते हैं आदरणीय दीदी के साथ भी तो विशेष आपकी भूमिका होती है, तो रोल ऑफ यूथ फॉर फ्यूचर इंडिया, ये विषय चुनने का क्या लक्ष्य रहा, क्या उद्देश्य रहा, क्या कहना चाहेंगे हमारे युवाओं को?
थैंक यू। जब विषय का चयन हो रहा था, हमारे सामने लक्ष्य यही था। जबकि ये कहा जाता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें युवाओं की जनसंख्या सबसे अधिक है कंपैरेटिव टू अदर कंट्रीज, अगर इस देश का युवा जागृत हो जाए और एकजुट हो जाए तो हम इस देश की रूपरेखा को बड़ा आसानी से बदल सकते हैं। वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में एक बहुत बड़ा जो फर्क है वो ये है कि भारतीय संस्कृति में बचपन से वैल्यूज सिखाई जाती है, तो हर भारतीय युवा में कुछ मूलभूत वैल्यूज का सिंचन होता ही होता है बचपन से, चाहे वो अपने माता पिता से होता है, चाहे परिवार से होता है, चाहे स्कूल वगैरह में एजुकेशन सिस्टम में होता है। अगर हमारे इन युवाओं को स्पर्श किया जाए और उनके अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड में ये मूल्य सिंचन किया गया है उसे उजागर किया जाए और उसे देश के पुनर्निर्माण के लिए किसी तरह आयोजित रूप में कार्यान्वित किया जाए तो हम इस भारत देश को फिर से और सुदृढ़ एक ऐसा देश बनाए जिसका स्वप्न हमारे गांधी बापू ने देखा, आज हमारे प्राइम मिनिस्टर भी देख रहे हैं, पास्ट में हमारे प्रेसिडेंट्स ने भी देखा है कि भारत फिर से विश्व गुरु बने। तो इस विषय का चयन रूपेश भाई इसलिए खास किया गया कि हम आने वाले युवाओं के इस छोटे से ग्रुप को भी इस विषय की ओर थोड़ा सा चिंतन करने की दिशा दें और वे इस कार्य में अपने आप को जुटाएं तो किसी न किसी रूप से एक अच्छा मीडियम हमारे ये युवा बन सकते हैं और मिलजुल करके हम एक नई दिशा की ओर अपने देश को ले जा सकते हैं।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बहुत ही सुंदर उद्देश्य कृति बहन जी ने रखा है और आप एक सर्वे देखते होंगे कि 66% ऑफ अवर पॉपुलेशन बिलो 35 इयर्स की एज के हैं, इसीलिए भारत को यंगेस्ट कंट्री कहा जाने लगा है। 2020 तक भी हमारे देश की जो एवरेज आयु होगी हमारे देश के लोगों की 29 इयर्स होगी, और देश तो बुजुर्ग होते चलेंगे लेकिन हमारा देश और जवान होता चलेगा, तो ये भी हम लोगों के लिए गर्व की बात है, इसीलिए युवाओं को इस विषय में सोचना बहुत आवश्यक हो जाता है। रंजना जी, मैं आपकी ओर आना चाहूंगा। रंजना जी विशेष विजिलेंस कमिश्नर रही हैं और आप चेयरपर्सन रही हैं नाबार्ड की, कनारा बैंक की, इंडियन बैंक की, बेस्ट वुमेन डायरेक्टर रही हैं, 2014 में इन्हें इस अवार्ड से नवाजा गया और साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी इन्हें दिया जा चुका है, तो हमारे सम्मुख एक बहुत ही बड़ी हस्ती हैं। मैं रंजना जी विशेष करके ये जानना चाहूंगा, बहुत सारी क्वालिटीज यूथ में होती हैं लेकिन जहां इम्प्लीमेंट करने की बात आती है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता कई स्थानों पे, तो आपके अनुभव से मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा क्या किया जाए जो अपनी सारी पोटेंशियल को हम इम्प्लीमेंट कर पाए जिससे अपना भी विकास हो राष्ट्र का भी विकास हो।
आपका जो सब्जेक्ट क्वेश्चन है उसका आंसर तो बहुत लंबा होगा मगर मैं उसको संक्षेप में बताना चाहूंगी कि एक चीज है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो भी कोई लाइन चुने, क्या आप कहीं नौकरी करना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं, और यू वांट टू सेट अप योर ओन यूनिट, जो बिजनेस करना चाहते हैं, वॉट एवर इज योर प्रोफेशन, जो प्रोफेशन, आप ये चीज जरूर याद रखें कि जो आप, अब मैं यहां की बात कर रही हूं, जैसे अभी लास्ट क्लास में जैसे बताया गया था आपको कि नियत हमेशा साफ रहनी चाहिए आपकी, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप क्या आपका लक्ष्य है, आप ग्रेजुअली ग्रो करें, आपका बिजनेस ग्रो करें, जहां नौकरी कर रहे हैं वहां ठीक से, मतलब विद इन द पॉलिसीज, विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसमें आप अपने कारोबार करें। अक्सर युवाओं में ये होता है कि उनको बड़ी जल्दी क्विक रिजल्ट्स चाहिए, हर चीज आपको लगता है, क्योंकि आजकल कंप्यूटर एज है, आप देखिए एक मिनट में आप एक मैसेज भेज देते हैं, जस्ट सेंड को बटन को क्लिक किया एंड द मैसेज इज गॉन। पहले जमाने में लंबी चिट्ठी लिखी जाती थी तो सोच विचार करके चिट्ठी लिखते थे, तो वैसे क्विक रिजल्ट्स, क्विक डिसीजंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आप डिले नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसके ऊपर आपको थोड़ी बहुत पेशेंस जरूर रखनी पड़ेगी। हर चीज का आप इमीडिएटली रिएक्ट ना करें, अक्सर ऐसा होता है, उससे क्या होता है कि अपनी जो अपना जो रिश्ता होता है विद कोलीग्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन या विद योर ओन पीपल इन बिजनेस, वो खराब हो सकता है। सोच समझिए, दूसरे आदमी का भी पहलू समझ के चलिए ताकि थिंग्स गो ऑल राइट। दूसरा क्या है कि कभी कुछ ऐसी बात हो जो चीजें नहीं हो आपके हिसाब से, मायूसी कभी नहीं होनी चाहिए इंसान के, बिकॉज आपके अंदर जो पोटेंशियल है उसके बारे में आपको भी पता नहीं है। मैं आपको बताऊं एक चीज कि देयर आर पीपल टुडे जो 80, 85, 90 में भी जाके दे आर सिटिंग ऑन बोर्ड्स, कॉन्ट्रीब्यूटिंग वेल, थिंकिंग, इमेजिनिंग। सो द पोटेंशियल हैज नथिंग टू डू विद द एज, इट इज योर व्यू ऑफ लाइफ, आप किस प्रकार सोच करते। पोटेंशियल आप लोगों का एनॉर्मस है, तो कोई चीज में मायूसी कभी मत होजिए, अंदर खोजिए, अंदर देखिए कि मैं क्या चीज करता हूं। कभी कभी आप देखेंगे आपको यू विल हैव टू टोटली चेंज योर लाइन, जो आप कर रहे थे यू गो इनटू समथिंग एंटायरली डिफरेंट, तो उस पर आप कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज फेथ इन योर सेल्फ, फेथ इन योर एबिलिटी टू डिलीवर, एज लॉन्ग एज आप सही ढंग से जा रहे हैं, इसकी बहुत अहमियत है। दूसरी चीज, जैसे आज बताया गया कि द बिगेस्ट मार्केटिंग पावर फॉर इंडिया इज इट्स यूथ, तो आपका जिस प्रकार चाल चलन होगा, जैसा आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा सोसाइटी में, उस पे कंट्री की इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो आने वाले बाहर से कंपनीज हैं या कुछ वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स आर दैट यहाँ पे द रूल्स आर फॉलोड, देर इज अ सर्टन, आपको इवन इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस देर इज अ एक स्टैटिस्टिक्स होता है, उसमें हम लोग कहाँ फिगर होते हैं ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन इंटरनेशनल लेवल, वेयर डज इंडिया स्टैंड इन टर्म्स ऑफ रेटिंग, इन टर्म्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी वगैरह। सो ऑल दिस गोज टूगेदर, एक एक का देखे तो क्या होता है, बाहर वाला भी अंदर आने की हिम्मत करता है कि हाँ भैया हर एक चीज ठीक से होती तो बढ़ सकता है। तो देर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन, दी अदर थिंग इज कि कोई भी सिचुएशन जैसे डिफिकल्ट आई तो उसमें आप एक तरह की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, जैसे अभी उषा दीदी भी बता रही थी कि लुक इन टू अपॉर्चुनिटीज, एक प्रॉब्लम आती है दूसरे कई दरवाजे खुल जाते हैं, लुक एट अपॉर्चुनिटीज, और अपॉर्चुनिटीज के लिए आपको सही निर्णय सही टाइम पे लेना पड़ेगा। जैसे कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी, एक बड़ी अच्छी कहावत है ग्रीस में, क्योंकि ग्रीक के भी बहुत गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं, जैसे हमारे देवी देवता हैं वैसे ग्रीक में गॉड्स एंड गॉडेसेस है, वो कहते हैं अपॉर्चुनिटी इज अ गॉडेस ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसके सामने बहुत सारे बाल होते हैं सामने, लेकिन पीछे बिल्कुल बॉल्ड हेड होता है। तो अगर आप सही टाइम पे निर्णय ना लें, अगर सही टाइम पे अपॉर्चुनिटी को सीज ना करें, तो वो घूम जाती है और बाद में आप एक गंजे सर को स्ट्रोक करेंगे एंड यू लूज दी अपॉर्चुनिटीज। सो टाइम फॉर टेकिंग अ डिसीजन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और वो जब ही होगा जब आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा, क्लैरिटी से जाएगा, आपको कोई प्रेजिडिस्ड ओपिनियन नहीं रखेंगे। अक्सर यू नो हम देखते हैं बिकॉज एक एक आदमी का ट्रांसफर हो रहा है, वो आ रहा है, और पहले से ही लोग कहते हैं अरे भाई वो बड़ा वैसा है, ये बड़ा वैसा है। कोई किसी को भी ना परखने से पहले समझने की कोशिश करिए, डोंट गेट इन टू प्रेजिडिसेस। सो देर आर वेरियस पॉइंट्स ऑन विच यू नो दिस मैटर कैन बी टॉक्ड अबाउट, लेकिन व्हेन यू आर लुकिंग एट योर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द कंट्री, इम्प्रूविंग द ऑपरेशंस ऑफ द कंट्री, इट हैज टू टेक अ वेरी मल्टी डायमेंशनल व्यू आपको लेना पड़ेगा। थैंक यू।
सिस्टर रंजनी की ओर चलना चाहूंगा। रंजनी बहन हमारे पास चेन्नई से यहाँ पे आई हुई हैं, आप भी तमिलनाडु में विशेष करके जो युवा प्रभाग की सेवाएं हैं उसको आप कोऑर्डिनेट करती हैं, बचपन से ही विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं। सिस्टर रंजनी मैं विशेष जानना चाहूंगा कि कई बार जब यूथ एज में हम होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये लाइफ है खेलने कूदने की, दुनिया को देखने की, ये लाइफ स्पिरिचुअल बातों के लिए या देश का उद्धार विकास, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, ये शायद हमारे लिए नहीं है, कई बार ये विचार आता है। लेकिन आपने बहुत यंग एज में ही अपना पूरा जीवन ईश्वरीय सेवा में भी लगाया और राष्ट्र के विकास में भी लगाया, आप निरंतर उसमें कार्यरत हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगी कि क्या इस एज में ही हमें इस कार्य में लगना चाहिए या स्पिरिचुअलिटी के हमारे विकास और देश के विकास में कितना योगदान हो सकता है?
थैंक यू फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी रूपेश भाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये भी कहना चाहूंगी कि एस माई मदर टंग इज नॉट हिंदी, थोड़ा मैं इंग्लिश में मिस करूंगी। जैसे रूपेश भाई ने कहा कि यंग एज में ये स्पिरिचुअलिटी के इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है, लेकिन आई वुड से फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस तो ये स्पिरिचुअल लाइफ मैंने इसलिए चूज किया कि मेरे पर्सनल लाइफ में दो इंसिडेंट्स हुई, तो उसके कारण मेरे लाइफ में ये लक्ष्य रहा कि मुझे कुछ डिफरेंट पाथ चूज करना है। व्हेन आई वाज टेंथ स्टडिंग माय टेंथ क्लास, तो उस समय मैंने बहुत एक्सपेक्ट किया, मेरे एल्डर्स और टीचर्स से एक्सपेक्ट किया कि वो लोग मेरे को एनकरेज करें, तुम्हारा हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है एंड यू कैन यू नो जॉइन हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन और इससे कॉम्पिटिशन, तुम्हारा आवाज अच्छा है, यू कैन स्पीक, यू कैन जॉइन दिस, यू नो आई वॉज एक्सपेक्टिंग, बहुत एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन मेरा पूरा स्कूलिंग चला गया, नोबडी एनकरेज्ड। तो आफ्टर स्कूलिंग मेरे मन में ये आया कि येस यू नो यंग माइंड्स को मोटिवेशन जरूर चाहिए, सो आई शुड डू दैट टास्क, वो एक मन में रहा। और दूसरा, बिकॉज माय ग्रैंडफादर्स दे वर ऑल फ्रीडम फाइटर्स, तो गांधी जी मूवमेंट में जाके जेल में भी गए हुए थे, तो यू नो आई वाज ग्रोन अप विथ ऑल दीज स्टोरीज ऑफ महात्मा गांधी जी एंड ऑल्सो पैट्रियोटिज्म, तो देशभक्ति की भी वो इंटरेस्ट, सो मैंने सोचा आई हैव टू मोटिवेट द यंग माइंड्स एंड ऑल्सो हेल्प द नेशन। तो ये दो लक्ष्य रहा। यू नो इन आवर लाइफ व्हेन वी हैव एन एम, जरूर उस एम को अचीव करने के लिए हम जरूर मार्ग ढूंढते हैं, और लक्ष्य पक्का है तो जरूर मार्ग भी हम राइटली सिलेक्ट भी कर लेते हैं। तो मैंने देखा, बचपन से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हूं, तो मैंने देखा ये स्पिरिचुअलिटी में ये दो मेरे डिजायर्स है, टू मोटिवेट others, I mean especially young minds, and also help the nation, ये दोनों चीजें ये spirituality में हो सकता है। So I entered into this spiritual life, and मैंने देखा कि if I have not chosen this path, I would have missed a lot, क्योंकि मैं इस ईश्वरीय सेवा में every day I would say, you know, बहुत creative ways of service है, इतना fulfillment है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट यू नो बीइंग ट्रू टू माय ओन सेल्फ, नोइंग माय ट्रू सेल्फ एंड आल्सो इम्बाइबिंग दोज वैल्यूज, तो यही स्पिरिचुअलिटी है। क्योंकि इस दुनिया में अफकोर्स सक्सेस का डेफिनेशन तो बहुत सारे हैं, और यूथ में है ना, हर एक के अंदर सक्सेस का डेफिनेशन अलग होता है, आई वॉन्ट टू बिकम लाइक दिस, ये प्रोसेस करना चाहती हूँ, पोजिशन या पोजिशन कोई भी हो, कोई भी प्रोग्रेस हो, अगर वैल्यूज नहीं है तो वो अधूरा है, इट विल बी शॉर्ट लिव्ड एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट। तो स्पिरिचुअलिटी में वैल्यूज का जो इनकल्केशन है वो है, तो इसलिए वैल्यूज स्पिरिचुअल नॉलेज में और स्पिरिचुअल लाइफ में होती है, तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हर एक यूथ को ये वैल्यूज और स्पिरिचुअलिटी के द्वारा जरूर आगे बढ़ सकते हैं, और नॉट ओनली सेल्फ डेवलपमेंट बट ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ द नेशन।
थैंक यू रंजनी बहन, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस बात को रखा है कि सचमुच स्पिरिचुअलिटी ही हमें आगे बढ़ाने के लिए और देश के विकास के लिए भी बहुत बहुत आवश्यक है और शायद मिसिंग डायमेंशन यही है जिसकी ओर हम सबका ध्यान नहीं है। हमारे बीच विशेष रजनीश जी भी हैं जो सेक्रेटरी हैं राजघाट समाधि समिति के, और जब रंजनी बहन गांधी जी की बात कह रही थी तो मुझे रजनीश जी की ओर आना होगा। अब रजनीश जी, विशेष गांधी जी जब विदेश यात्रा के लिए जा रहे थे तो उनकी माँ बहुत वरीड थी कि जब आप जाओगे विदेश तो वहां का जो कल्चर है उसमें आप रंग जाओगे और ऐसा मैं नहीं चाहती। तो गांधी जी ने एक विशेष करके प्रतिज्ञा की थी कि मैं मांस को, मदिरा को या महिला को टच नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा उन्होंने की और उसके पश्चात माता जी ने उन्हें जाने दिया। आज यदि देखा जाए रजनीश जी, तो ये सर्वे कहता है कि 20% ऑफ यूथ, जो 20% युवा हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यसन से ग्रस्त कर लेते हैं, और साथ ही ये भी सर्वे कहता है कि युवा बहुत तेजी से इसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, इसकी लत लगती चली जा रही है। आपको क्या लगता है कि व्यसन युक्त देश या व्यसन युक्त युवा राष्ट्र के विकास में, राष्ट्र के भविष्य में क्या योगदान दे सकता है, और यदि इससे मुक्त होना है तो क्या कहेंगे, हमारे सभी युवा साथी जानना चाहेंगे।
गांधी जी जब विदेश जा रहे थे तो मां ने यह प्रतिज्ञा कराया, यह बिल्कुल अंशतः सत्य है। मित्रों, हमारे युवा व्यसन की ओर बढ़ रहे हैं, यह भी सत्य है। हम उनको कैसे रोक सकते हैं? व्यसन एक सामाजिक समस्या है। ये जागृति उनमें कहां से आ सकती है? मुझे अध्यात्म की ओर जाना होगा। आपने मेडिटेशन की बात की। जब तक आप में एनर्जी है आप कहीं भी जा सकते हैं, उसको ढालना होगा। वह अध्यात्म ही है जो आपको सही दिशा देगा अगर आप भटकेंगे तो। कल दादी जी ने कहा था ओम शांति, वो तावीज अगर आपके पास रहेगी, अगर उसको आप तावीज के रूप में अपने पर्स में रखेंगे तो जैसे ही आपका दिल भटकेगा वह बार बार आपको आगाह करेगा तुम उधर मत जाओ। और ये सब हमारी भोगवादी संस्कृति का उपज है मित्रों। हम उपभोक्तावादी अत्यधिक हम आर्थिक विकास की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन जब तक आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तब तक हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। और मैं तो 2-3 क्लास यहाँ किया, लगता है जो आज हमारी जितनी भी चाहे व्यसन हो या अन्य जो सामाजिक समस्याएं हैं सबका समाधान जो मेडिटेशन है, योगा है, अगर आपका मन ठीक रहेगा आप सही रास्ते पे जाएंगे, आप शायद व्यसन मुक्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए इस युवा पीढ़ी को संभालने की जरूरत है, आध्यात्मिक रूप से प्रशिक्षित करने की जरूरत है। धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब इस चीज को महसूस तो करते हैं आदरणीय कृति जी कि सचमुच ये चीजें बुरी हैं। व्यसन करना बुरा है या दूसरी और जो बुरी चीजें हैं, हमें बुरी तो लगती हैं और लगता है कि ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। अपने युवा साथियों की ओर से एक प्रश्न मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंगा कि हम जानते हैं कि ये बुरा है लेकिन फिर भी उसकी ओर हम खींचे चले जाते हैं। कई बार हमारे साथी जब ऑफर करते हैं हम उन्हें मना नहीं कर पाते। कई बार हमें लगता है कि एक बार तो करके देखना चाहिए एक्सपीरियंस कि ये कैसा होता है। तो आप क्या कहेंगे इस विषय पे, क्या प्रकाश देना चाहेंगे हमारे युवाओं को, जब हमारे अंदर ये तलब हो, जब उधर आकर्षण हो, जब हमें ऑफर किया जा रहा हो, कैसे हम अपने आप को रोकें? क्या राजयोग में या ब्रह्मा कुमारीज में कुछ ऐसी शिक्षा दी जाती है, कुछ ऐसा बल दिया जाता है जिसके द्वारा हम आत्म रूप से संयमित हो सकें?
एक बात तो कही आकर्षण की, और बुरा है ये जानते हुए भी उस ओर खींचे जाने के संतुलन की। मैं एक छोटा सा मिसाल देना चाहूंगी यहाँ। एक यूनिवर्सिटी से काफी साल तक मैं संलग्न रही, और एक बार दो बच्चे काफी दिन तक मुझे क्लास में दिखाई नहीं दिए। मैंने जब पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें थोड़ा टाइम के लिए क्लास से सस्पेंड किया गया है। जो मेरी इमेज वो बच्चों के लिए थी वो बहुत अच्छी थी, इसलिए मैं स्ट्रेट वे प्रिंसिपल के पास गई और मैंने पूछा, मैं जानना चाहती हूँ कि बच्चों को सस्पेंड क्यों किया गया है। प्रिंसिपल ने कहा कि एनुअल फंक्शन में वो दोनों ने ड्रिंक ली हुई थी और ड्रिंक करके उन्होंने थोड़ा सा तूफान मचाया था, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया। मैंने उनसे परमिशन ली और प्रिंसिपल ने वो दोनों बच्चों को मेरे पास बुलाया। मैंने उनसे पूछा कि मैं जानती हूँ कि आप लोगों के अंदर ये आदत नहीं हो सकती है और मेरा जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है आप लोग काफी अच्छे फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, तो ये सब आपके पास कहाँ से आया? बुरी चीज हमेशा ही बुरी होती है। वो बच्चों ने मुझे एक ही बात कही कि मैडम, हम लोगों को हमारे फ्रेंड्स ने कहा कि कुछ नहीं होता है, एक बार तो करके देखो। ये एक बार की बात दूसरी बार जब सामने आई हम रिफ्यूज नहीं कर पाए, क्योंकि पहले दिन हमने हाँ किया था, तो दूसरी बार हम रिफ्यूज नहीं कर पाए। और तीसरी चौथी बात करते वो जो बच्चे थे वो तो बहुत लंबे समय से ड्रिंक्स वगैरह लेते थे तो आदत ही हो गए थे। ये बच्चे आदत ही नहीं थे, इसीलिए उनको वो नशा ज्यादा चढ़ गया और इसीलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। फ्रेंड्स, में इतना ही कहना चाहती हूँ कि जो चीज बुरी है वो किसी भी हाल में बुरी ही है। शुरुआत कोई भी चीज की थोड़े से होती है, लेकिन यहाँ हमारी दृढ़ता की एक सबसे बड़ी परीक्षा होती है। अगर एक बार हम दृढ़ता से उसे रिफ्यूज कर पाते हैं कि मैं नहीं लेती हूँ या लेता हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन ये चीज के लिए आइंदा प्लीज आप मुझे कभी भी फोर्स नहीं करना। अगर पहली बार आप दृढ़ता से उस चीज को रिफ्यूज कर पाते हैं तब तो आप सदाकाल के लिए उससे बच सकते हैं। लेकिन अगर एक बार दो बार लोगों को खुश करने के लिए आप इन्वॉल्व हुए तो उसमें इन्वॉल्व होना तो बहुत इजी है, बाहर आने में दिक्कत होती है। खैर, हर चीज का उपाय तो है। हमको मेडिटेशन जो सिखाता है उसमें इस चीज को लेकर सबसे अहम चीज ये है कि जिस विल पावर को या जिस दृढ़ता को हम पहले दिन अपने अंदर नहीं भर पाए, आध्यात्मिकता और मेडिटेशन हमें अपने अंदर मनोबल, अपने अंदर दृढ़ता को कैसे विकसित किया जाए इसकी शिक्षा भी देता है और इसका अभ्यास भी देता है। जितना जितना हमारा विल पावर बढ़ता जाएगा, जितना जितना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा अपने अंदर, उतना उतना इन सब चीजों से बचना और बाहर आना। जो फंसे हैं उन्हें बाहर आना है और जो बचे हैं वो बचे रहें, ये दोनों चीजों को मेंटेन करने में हमें आध्यात्मिकता बहुत बहुत सहयोग देती है। और स्पेसिफिकली मेडिटेशन हमारे आंतरिक शक्तियों का विकास करती है। आजकल हमारे पास इतने सारे टेक्नोलॉजी ने साधन दिए हैं जो इंटेलेक्चुअली बौद्धिक रूप से हम बहुत तेज गति से विकसित होते जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो मानसिक शक्तियां हैं, कोई बात को सहन कर पाना, जब कोई चैलेंज आता है तो उसे फेस कर पाना, जो बात मुझे पसंद नहीं है वो जब आती है तो उसमें एडजस्ट करना या कॉम्प्रोमाइज करके रिलेशन को बचा करके बात को संभाल करके आगे निकल जाना, ये कुछ जो हमारी मानसिक शक्तियां हैं वो मानसिक शक्तियों के विकास के लिए हमारे पास बहुत कम साधन उपलब्ध हैं। मेडिटेशन इट्स वन ऑफ द बेस्ट मीडियम जिसके द्वारा हम हमारे मानसिक विकास को बहुत ही सुदृढ़ कर सकते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया कृति बहन जी। ये सचमुच एक सुंदर चीज है जिसका अनुभव आप लोग यहाँ करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे एम्पावर करे, आगे बढ़ाए या ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी एक संबल प्रदान करे। रंजना जी, विशेष आपकी ओर आना चाहूंगा कि आपने बहुत सारी चीजें अलग अलग स्थानों पे आप रही हैं बैंक
ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है, आज रंजनी बहन है, रंजना कुमार जी हैं और रजनीश कुमार जी हैं
और रुपेश भी हैं तो रंजना कुमार जी, विशेष करके जैसे कृति बहन जी कह रहे थे कि बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं और जब चैलेंजेस आते हैं लाइफ में तो कहीं ना कहीं हम उस संघर्ष में कई बार जीत पाते हैं, कई बार हार पाते हैं। जब मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था तो लग रहा था कि आपने जीत ही जीत दर्ज की है अपनी लाइफ में, और युवाओं में जीतने की एक तलब होती है कि मैं जहां पे भी रहूं जीत दर्ज करूं, चाहे मानसिक स्तर पे विकारों की विकृतियों की बात हो, चाहे मेरे करियर की बात हो। तो मैं आपके जीवन के 3 सूत्र जानना चाहूंगा आज हमारे सभी युवाओं के लिए, कि जब कभी मानसिक रूप से भी हम बुराइयों की ओर बढ़ने की बात आती है कि भाई चलो किसी ने वाइन ऑफर किया, किसी ने गुटखा ऑफर किया, मानसिक रूप से या बाहरी तौर से भी जब चैलेंजेस आए हमारे सामने, परिस्थितियां आए, कैसे उसे विन करें, आपके अनुभव से जानना चाहूंगा 3 वो सूत्र, ठोस सूत्र जिसके द्वारा हमारे युवा जीतते चले।
देखिए, एक चीज होती है जैसे टेकिंग अप फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन जो आपने बताया कि अक्सर हम लोग कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसमें मतलब मदिरा की बात हो रही है अभी तो उस पे आपको चाहिए, लेकिन एक होता है कि सोसाइटी इज लाइक दैट, सोसाइटी इज कैरिंग ऑन। जैसे आप कोई पास होके कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आए या इन वेनी ऑफ दीज लार्ज कंपनीज है, ये अर्नेस्ट एंड यंग या प्राइस वाटर हाउस कंसल्टेंट्स, बहुत से लोग तो क्या होता है इसमें थोड़ा सा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जैसे दीदी बता रही थी इस दे, तो कोई भी सोशल जगह बैठो तो हैविंग अ ग्लास ऑफ वाइन इज कंसिडर्ड अ इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ थिंग। तो वो क्या कहा जाता है कि रिलैक्सेशन मिलता है आपको, एक रिलैक्सेशन। अक्सर मैंने देखा है 2 चीजों के बारे में कहा जाता है, एक देयर माइंड विल बी रिलैक्स्ड, माने उसका मतलब है कि सारा दिन आप बहुत कशिश में है, टेंशन में है, स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, वी आर गोइंग विद दैट अजम्पशन, तो आपके माइंड को रिलैक्सेशन चाहिए, एक तो ये है। नंबर 2, इट्स अ फैड, एवरीबडी इज डूइंग इट, सो आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, आई वॉन्ट टू एसोसिएट माई सेल्फ, मैं भी उनके साथ अपने आप को उनके जैसे हूं, मैं अलग ना लगूं, मैं आई शुड नॉट बी अवे फ्रॉम दैट, सो आई डू दैट। सेकेंड इज आई एम ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ माई स्ट्रेस, यू नो आई एम सो टेकन आउट, ये एक माध्यम है मेरे लिए जब थोड़ी देर के लिए मैं खुश हो जाता हूं, खुशी मिल रही है मुझे इससे, तो रिलैक्सेशन मिल रहा है, खुशी मिल रही है और मैं सबके साथ हूं। देखिए, यहां पे अपने को सोच और विचार करने का मतलब है, आपने जो करियर चुना है, जो भी कुछ चुना है, आपको उसमें काम करने का भी तरीका समझना पड़ेगा। हाउ कैन आई वर्क टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेसिटी, बेस्ट मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन दूं और किसी अनेक दूसरे किसी चीज का सहारा लेते हुए ना करूं लाइक दिस। ये तो एक आउटवर्ड चीज है, जब तक इसका असर होगा 2 घंटे आपको लगेगा आप रिलैक्स हैं, एक्चुअली आप रिलैक्स नहीं हैं, आपके अंदर की जो कुछ नर्व्स हैं जिनको 24 घंटे काम करना चाहिए वो काम करना छोड़ देती हैं, तो आपके शरीर को इन अ वे कमजोर हो रहा है, आपका एक शरीर कमजोर होता जाता है और इस पे आप डिपेंड करने लगते हैं। सी, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, इट्स अ साइकिल। आपने शुरू किया होगा वंस अ वीक या वंस इन 2 वीक्स, फिर आगे बढ़ता है, फिर आगे बढ़ता है, तो इस तरह से होता है, तो वो समय तक है जब तक ठीक नहीं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें कि आपके अपने डिसिप्लिन्ड वे ऑफ लाइफ कोई अच्छी बात है, समय पे उठना, समय पे करना हर एक चीज, समय काम भी करना उसमें, उससे क्या होगा आपकी अंदरूनी शक्ति बढ़ती है, यू आर एबल टू बी वेरी स्ट्रांग। Today, I mean, I don't want to talk about myself, but as a woman, I had responsibilities at home also. तो वो करते हुए, वो जिम्मेदारियां करते हुए 8 states में काम किया अलग अलग जगह, फैमिली को भी छोड़ना पड़ा, लेकिन उस सब को भी हम कर सकते हैं, इसलिए कोई किसी चीज का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि आपकी इंटरनल हेल्थ अच्छी होती है। देखिए, आज अगर आप देखें डॉक्टर से मिलके बात करें, इसमें कोई डॉक्टर होता तो बहुत अच्छा होता कि फ्रॉम 35 ऑनवर्ड्स यू आर गेटिंग लॉट ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस, स्ट्रेस हो रही है, बीपी हो रहा है, अगर ये मदिरा के द्वारा सॉल्व हो जाता तो ये डिजीजेस क्यों होती? मतलब लॉजिकल समझिए, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो नहीं, सिर्फ ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं पीना नहीं पीना, नहीं ये नहीं कह रहे, उसकी वजह बता रहे हैं। आपको रिलैक्स करने के अनेक जरिए होते हैं, आप वो ढूंढिए, आप हॉबीज रखिए। देखिए एज अ यूथ यू मस्ट हैव अ हॉबी, कोई भी एक हॉबी रखिए अपनी, गार्डनिंग रखिए, पेंटिंग रखिए, गाना बजाना ही रखिए, एनीथिंग विच इज क्रिएटिव जो आपको लगेगा कि आप कर रहे हैं। हॉबी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और आगे बुढ़ापे में तो और भी काम आती है वो, तो दैट इज अनदर पॉइंट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से। तो ये एक, और भेड़ चाल मत करिए, वो कर रहा है तो मैं करूं, ये कर रहा है तो मैं करूं। हाँ, मुझसे भी पूछा गया कि आपने तो विलायत में काम किया, यूएस में काम किया, क्या आप वाइन नहीं लेते? मेरे कोई जरूरी लिखा हुआ है कहीं कि आप बाहर जा रहे हो तो वाइन लो और ये नहीं लो? देखिए ये सब मन भड़ंत बातें हैं। यू कैन बी एज सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल विदाउट फॉलोइंग। अपने आप को कमजोर मत बनाइए, आप मालूम नहीं होता लेकिन इंसान कमजोर बन जाता है, क्योंकि एवरी टाइम यू वॉन्ट समथिंग टू लीन ऑन, किसी का सहारा ले रहे हैं आप। और ये चीज तो एक बड़ी प्रैक्टिकल पॉइंट है, तो ये चीज को आपको देखना पड़ेगा। दूसरा जो आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूं कि मैंने एक चीज है, जिन लोगों के साथ मेरी काम किया, जो भी जो बैंक्स में काम किया, उसमें मुझे हमेशा लगा कि जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे साथी हैं, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे, हमेशा इंपॉर्टेंट रहे। मेरा एक बहुत ओपन ट्रांसपेरेंट मेथड था, जैसा इंडियन बैंक में एकदम इट वॉज अ लॉस मेकिंग बैंक, 26,000 लोग थे, उनकी जिंदगी उनकी नौकरियों का सवाल था। एक समय आया था जब ये बैंक सोच रहे थे कि बंद करना चाहिए क्या, लेकिन भारत सरकार का बैंक है, बंद तो हो नहीं सकता। उसमें मुझे लगा कि मैंने अपने मन में सोचा आफ्टर द असाइनमेंट कि अगर बैंक तो कमजोर था, बैंक तो बिल्कुल कमजोर था, लेकिन जो काम कर रहे वाले लोग कमजोर नहीं थे, जो बैंक में काम करने वाले लोग वो कमजोर नहीं है। तो जैसे बता रही थी रजनी जी कि मोटिवेट करना लोगों को, मोटिवेशन इज समथिंग विच आई मीन मैं ज्यादा नहीं कहती, ये चीज पे मैंने हमेशा जोर दिया कि लोगों को मोटिवेट करो, प्यार से बात करो, जब का जब भी आपको किसी को कॉम्प्लीमेंट करना जब ही करो। ये मोटिवेशन पे एक जगह मेरी ये एक पब्लिक सेक्टर में सीनियर ऑफिशियल से बात हुई तो एक जना कह लेगा मैडम आई ऑलवेज मोटिवेट एवरी फ्राइडे। नो यू डोंट हैव टू वेट फॉर अ फ्राइडे टू मोटिवेट, कोई ऑस्पिशियस डे की जरूरत नहीं, जब का जब ही किसी ने अच्छा काम किया उसको। आपको मालूम है पब्लिक सेक्टर्स में हम एक पैसा ज्यादा नहीं दे सकते, प्राइवेट सेक्टर में तो आपको कुछ अच्छा किया तो एडिशनल इंक्रीमेंट्स वगैरह अलाउंसेस व्हाटएवर मिल जाते हैं, बट इन पब्लिक सेक्टर इट हैज टू बी, यू हैव टू बी अ वेरी वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। ऑब्जर्वेंट रहिए, आपके कोलीग ने आपके सबॉर्डिनेट ने अच्छा काम किया, जब का जब उसको मोटिवेट करो आप उसको अपने तरफ जीत लेते हैं, आफ्टर ऑल हम लोग सब। और दूसरी क्या चीज है कि किसी की कमियों पे फोकस ना करें। कौन बता दीजिए कौन एक भगवान का बंदा है जिसमें कमियां नहीं है? हर एक में होती हैं, हम में हैं, सब में हैं, इंसान सीखता है। तो कमियों को पॉइंट आउट करने के लिए देखिए कुछ लोगों की आदत होती है, जैसी कमी पकड़ लिया तो हम लोग माँ बाप बच्चों के साथ भी ये करते हैं अक्सर, नहीं करना चाहिए। आप उनको सुधारने की कोशिश करिए, बात करिए एक दफे दो दफे। सो आई थिंक दीज आर द वेज इन विच, ऐसे तो बहुत सी सिचुएशंस हैं लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी आपको बता दूं।
थैंक यू वेरी मच, विशेष करके बहुत ही सुंदर वैसे चर्चा है। मैं सभी जो हमारे साथी हैं मतलब मंच पे बैठे हुए हैं बहुत अनुभवी हैं और जीवन में बहुत सारे सुंदर अनुभव इन्होंने प्राप्त किए हैं, लेकिन अंततः मैं सभी से एक एक लाइन में एक प्रश्न करना चाहूंगा जिसका उत्तर आप लोग हमारे सभी जो श्रोता हैं दर्शक हैं उन्हें दें। प्रश्न मेरा ये है कि आज का जो विषय है कि रोल ऑफ द यूथ फॉर फ्यूचर इंडिया, क्या ऐसा एक कार्य हम करें और कौन सी ऐसी एक बात है जिसे हम छोड़ दें जिसके द्वारा हम अपने भी भविष्य को श्रेष्ठ बना सकें और देश के भविष्य को भी उज्जवल कर सकें? मैं एक एक लाइन में आप सभी से ये जानना चाहूंगा। शुरुआत सिस्टर रंजनी से करना चाहूंगा कि सिस्टर रंजनी कौन सी एक ऐसी चीज आज के इस विशेष सत्र से हम धारण करने का संकल्प लें और कौन सी एक चीज छोड़ दें ताकि मेरे देश का भविष्य बहुत उज्जवल हो, श्रेष्ठ हो।
आई वुड से दैट हमारे लाइफ में पहले मेरे एक्सपीरियंस से भी मैं ये कहना चाहूंगी कि सेल्फ मोटिवेशन। और ये जो विल पावर की बात बहन जी बता रहे थे, तो उस समय एक छोटी सी छोटा इंसिडेंट आई जस्ट वांट टू शेयर। तो जब मैं कॉलेज में थी, स्टूडेंट्स इलेक्शन का वो हुआ, तो हमारे क्लास में जो कंटेस्ट करने वाली थी सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, उनको सडनली वो बीमार हो गई, तो मेरे को चुना गया कि यू हैव टू कंटेस्ट फॉर द सेक्रेटरी पोस्ट। क्योंकि बट मेरा ये नेचर था कि इतना मैं डरपोक थी, किसी से बात भी करना वो इतना, आई हैड सो मच फियर एंड वेरी शाई, वेरी मच रिजर्व्ड। तो ऐसा मेरा संस्कार, आई मीन नेचर थी। एंड सडनली दे सिलेक्टेड मी टू कंटेस्ट फॉर द पोस्ट। तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन मैंने सोचा कि वॉट एवर द फियर आई हैव, आई शुड डू दैट, देन दैट फियर विल गो। सो अपने आप को ऐसे मोटिवेशन मैंने दिया। तो सभी क्लास में गई और सभी के सामने, मतलब आई वॉज नॉट सीइंग द पीपल, मैं सीधा वॉल को देख करके जो भी मैंने प्रिपेयर करके गई थी वो ऐसे स्पीच देके फिर बाकी आ गई, वोट फॉर मी ऐसे करके। फिर सडनली एक अनाउंसमेंट आया कि सभी के सामने स्पीच देना है। तो आई वॉज रियली अफ्रेड ऑफ दैट, क्योंकि मेरे को तो एक ही स्पीच देना था, वो तो पूरा हो गया, अभी दूसरा स्पीच क्या दूं। लेकिन आई प्रिपेयर और फिर से मैंने वो स्पीच दिया, और उसके बाद वो सारा वोटिंग का वो सब रिजल्ट आया इलेक्शन का। एंड माय फ्रेंड्स वर वेरी एंग्शियस, अरे रंजनी जीत हुई या नहीं। एंड यू नो द रिजल्ट केम आउट एंड आई डिड नॉट विन, मुझे वो पोस्ट नहीं मिला, इलेक्शन में मैं लूज हो गई, वो नहीं मिला। लेकिन आई फेल दैट आई हैव सक्सीडेड, क्योंकि वो जो अंदर में मेरे अंदर जो फियर था ऐसे बोलने का, वो तो चला गया। तो इट वॉज रियली अ विक्ट्री फॉर मी। सो मेरे एक्सपीरियंस से मैं यह कहना चाहूंगी कि यू नो सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ लव, पहले अगर मिस्टेक हो जाते, जैसे रंजना बहन जी भी कह रही थी कि मिस्टेक तो होता है और वीकनेस तो होती है हर एक में, बट आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ, आई हैव टू लव माई सेल्फ। तो सेल्फ लव, सेल्फ अप्रिसिएशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है अपने अंदर धारण करने की। और जो भी बाय है और कंपैरिजन है वो जरूर छोड़ना है, बिकॉज ईच वन ऑफ अस इज यू नो यूनिक, सो वी नीड नॉट कंपेयर विद यू नो आवरसेल्फ विद एनीवन एल्स इन दिस वर्ल्ड। सो एक है सेल्फ अप्रिसिएशन एंड सेल्फ लव, एंड दूसरा है कंपैरिजन को छोड़ना है। तो ये मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ। थैंक यू
वेरी मच। रजनीश जी, आप क्या कहेंगे, कौन सी एक चीज आज लेके जाएं, धारण करके जाएं, और कौन सी एक चीज छोड़ दी जाए? प्रतर रजनीश जी,
आज युवाओं में अगर सेल्फ कंट्रोल हो जाए, आत्मनियंत्रण की बात मैं कर रहा हूं, इसकी प्राप्ति कैसे होगी, वह मेडिटेशन से होगी। आपका चित्त शांत रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, आध्यात्मिक चिंतन जागृत होगा, आप स्वतः बुराई को छोड़ देंगे, अच्छाई की ओर बढ़ जाएंगे, उसमें और कुछ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एक खाली मन, तरह तरह की बातें आते रहती है, लेकिन मुझे आत्मज्ञान नहीं हो पाता, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यही आज का युवा पीढ़ी फिसल जाता है और रास्ते से भटक जाता है। तो उनको सही रास्ते पर लाने के लिए जो मेडिटेशन का सहारा हम उन्हें लिया है, ये मैं सुबह भी आया, मुझे लगा कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान तो इसी में है, उसी के ट्रेनिंग की जरूरत है। और मैं फिर एक बार कहूंगा कि कल जो दादी जी ने कहा था, ओम शांति का जो अर्थ बताया, उस बहुत एक गंभीर शब्द है, उसकी अगर व्याख्या की जाए तो दिन भर भी लग सकता है। मित्रों, उसको आप तावीज के रूप में रखें, और जब आप यहां से जाएं तो अपने 10 मित्रों को वो ताबीज वितरित करें, फिर वो अगले 10 को वितरित करेंगे और इस तरह जो इस ज्ञान सरोवर से जो आध्यात्मिक चिंतन का सहारा लेकर देश के निर्माण की बात हो रही है, कोई तो केवल कारखाना खोलकर दुनिया का शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता है, शायद हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए जब तक हमारा आध्यात्मिक विकास नहीं होगा तो सांस्कृतिक विकास नहीं होगा और उसके बिना हमारा आर्थिक विकास अधूरा रहेगा। इसीलिए युवा पीढ़ी की भागीदारी हमारी इस आध्यात्मिक विकास की ओर होना चाहिए और इसकी प्राप्ति कैसे होगी, वो बहनों ने जो क्लास लेकर, मैं तो अपनी एक स्टूडेंट था इसलिए मैं अधिक नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं भी सीख ही रहा हूँ, मैं पहली बार आया हूँ, मैं सुबह से सीख रहा हूँ, सर अगली बार और अच्छा मैं बोलूंगा। मैं जितना सीखा हूँ मेरी डायरी में कैद, मैं पढ़ भी नहीं पाया हूँ, मैं लगातार क्लास में ही हूँ, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी बन गया हूँ आपकी तरह आकर के। मित्रों, इसीलिए आप ये लेकर जाइए और उस तावीज को लेकर के जाइए और अपने मित्रों को बांटिए। हमको लगता है कि 10 साल अगर यह चयन चलता रहेगा तो ये करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाएंगे और वो नियंत्रित करें जो बांट रहे हैं कि हमारा चयन सही चल रहा है कि नहीं, फिर वो कहाँ मेडिटेशन करेंगे, युवा कहाँ जा रहे हैं, वो उनका ख्याल रखेंगे और लगता है ये माउंट आबू पर्वत एक दिन युवाओं से भर जाएगा और जगह नहीं बचेगी और सारा हमारा देश विकसित हो जाएगा। मित्रों, धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका रजनीश जी, सचमुच बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सभी के विचार। समय की सीमा है, मुझे लगता है कि आज का ये सुंदर टॉक शो आपके अंतर को प्रकाशित किया होगा इसने और साथ ही नई नई चीजें आपने जानी हैं, समझी हैं, चिंतन की आवश्यकता है। मित्रों, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप सुन रहे हैं इस परिसर में, ज्ञान की बातें हमारी दीदियों से, हमारे जो वरिष्ठ हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए हैं वो भी अपनी ज्ञान की अनुभव की बातें हमें सुना रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा कि जहां करने की अभिलाषा होती है वहां कार्य शुरू हो जाता है, हमें बस अब एक कदम आगे बढ़ाने की ही आवश्यकता है। क्यों ना हम इन सब पे बहुत गहराई से मनन करें, चिंतन करें, क्योंकि देशभक्ति की ही बात है, राष्ट्र का यदि निर्माण करना है तो सचमुच हमारे अंदर देशभक्ति का एक जज्बा अवश्य होना चाहिए। वो कहा है ना, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें मातृभूमि के लिए प्यार नहीं। लेकिन आप सबका हृदय बहुत कोमल है और जिसके अंदर मातृभूमि के लिए, देश के लिए बहुत भावना है, बहुत सम्मान है, इसलिए आप सब राष्ट्र के भविष्य को बहुत उज्जवल बनाने के लिए अवश्य चिंतन करेंगे। आज के हमारे सभी जो मेहमान हैं जिन्होंने अपनी सुंदर जी रंजना कुमार जी कुछ अनुभव शेयर करना चाहती हैं।
बस एक मिनट, मैं एक ही चीज कहना चाह रही थी कि ये सोशल मीडिया पे जो यंग लोग हैं बहुत डिपेंडेंट हैं आजकल, ट्विटर है, SMS है, फेसबुक है वगैरह, तो इसको आप, ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको केवल एक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए रखें, इन्फॉर्मेशन या डेटा या कंपैरिजन के लिए रखें, लेकिन ज्यादा इस पे ऊपर ध्यान ना दें, ये बहुत समय का नष्ट होता है और समय नष्ट होते हुए मालूम नहीं होता है। एक तो नंबर वन, नंबर टू क्या करना चाहिए, एक सर्विस एटीट्यूड रखिए। सर्विस एटीट्यूड, किसी की हेल्प करना, हेल्प करने का ये नहीं मतलब है पैसों से हेल्प करना, अगर आपके पास है आप दे रहे तो वो अलग बात है, लेकिन सर्विस एटीट्यूड, कोई दुखी आदमी को सहारा देना, या यहाँ पे आप लोग जो सीख के आए हैं, जो सीखा है आपने चार दिन में जो आप सीखेंगे उसको औरों को बताइएगा, ये एक बहुत बड़ी ट्रिब्यूट होगा इस कोर्स के लिए। थैंक यू,
बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अब परमात्मा की स्मृति से आज के इस टॉक शो को संपन्न करेंगे।
स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूर चले, स्वर्णिम भारत बनाने शांति दूर चले, मन